नमस्कार, आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो हम सबसे जुड़ा है। हम सब जानते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, फिर भी क्यों हम अक्सर वही करते हैं जो सब कर रहे होते हैं।
हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प पहेली है और इसी को सुलझाने के लिए आज हम पूज्य गुरुदेव के हमारा युग निर्माण सत्संकल्प के 14वें सूत्र पर विचार करेंगे।
अच्छा,
सत्संकल्प की शुरुआत ही एक बहुत गहरे सवाल से होती है कि भगवान ने हमें सही गलत, लाभ हानि ये सब समझने के लिए बुद्धि तो दी है।
हाँ बिल्कुल।
छोटे मोटे रोजमर्रा के कामों में हम इसका इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन जैसे ही कोई बड़ी सामाजिक परंपरा या कोई पुरानी रीत सामने आती है तो हमारी यही बुद्धि मतलब कुंद क्यों पड़ जाती है।
ये तो वाकई सोचने वाली बात है, और इसको समझाने के लिए जो उदाहरण दिया गया है वो तो कमाल का है, वो भेड़ों के झुंड वाला,
हाँ,
कि कैसे अगर एक भेड़ कुएं में गिर जाए तो बाकी सब भी बिना सोचे समझे उसके पीछे पीछे कूद जाती हैं। क्या हम इंसान भी कई बार ठीक ऐसे ही नहीं करते?
बिल्कुल। और सत्संकल्प इसी को अविवेक कहता है, मतलब विवेक का इस्तेमाल न करना। हम अंदर से जानते हैं कि ये गलत है, पर पानी में बहते तिनके की तरह बस बह जाते हैं।
मतलब ये कि जैसे लोग जानते हैं कि चाय, बीड़ी या दूसरे नशे सेहत के लिए खराब हैं,
फिर भी उन्हें अपनाते हैं।
हाँ, फैशन या बड़प्पन की निशानी मानकर। ये एक तरह का अंधानुकरण है, जैसा सत्संकल्प में कहा गया है, बंदर की नकल जैसा।
और देखिए, ये बात सिर्फ व्यक्तिगत आदतों तक ही नहीं रहती, ये तो पूरे समाज को अंदर से खोखला कर देती है।
कैसे?
सत्संकल्प उन बड़ी कुरीतियों पर ध्यान दिलाता है जहां हर कोई जानता है कि ये गलत है, पर फिर भी चुपचाप उसे निभाता चला जाता है। जैसे विवाह में दिखावे के लिए अपनी जीवन भर की कमाई उड़ा देना।
और वो हत्यारा, दहेज जैसी प्रथा।
बिल्कुल। या फिर मृत्यु भोज जैसे खर्चीले रीति रिवाज, हर कोई जानता है पर विवेक परंपरा के आगे हार मान लेता है।
ये देखकर हैरानी होती है कि हमारा विवेक इतना कमजोर कैसे पड़ जाता है।
सत्संकल्प में इसकी तुलना एक ऐसी बात से की गई है जो सुनने में ही नामुमकिन लगे।
अच्छा,
सोचिए, जैसे कोई कहे कि एक बकरे ने शेर की गर्दन मरोड़ दी।
ये तो हो ही नहीं सकता।
हाँ, तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि विवेक का परंपरा से हार जाना भी इतना ही अस्वाभाविक और हैरान करने वाला होना चाहिए।
तो अगर ये इतना अस्वाभाविक है तो फिर इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए? इसकी शुरुआत कहां से हो?
इसका जवाब सत्संकल्प में बहुत सीधा और शक्तिशाली दिया गया है कि दूसरों को सुधारना शायद मुश्किल हो, पर खुद को सुधारना तो हमारे हाथ में है।
अपने दृष्टिकोण को बदलना।
हाँ, शरीर के रोगी होने का, मन के मैला होने का और समाज में कुसंस्कार फैलने का, इन सब का एक ही मूल कारण बताया गया है, अविवेक।
लेकिन ये कहना आसान है, असलियत में तो सामाजिक बहिष्कार का डर बहुत बड़ा होता है, इन गहरी जड़ें जमाई हुई कुरीतियों से टकराना।
आपने बहुत सही मुद्दा उठाया और इसी डर का जवाब सत्संकल्प में है। ये जो गहरी जड़ें जमाई हुई दिखने वाली कुरीतियां और अंध परंपराएं हैं ना, वो असल में कागज के बने रावण की तरह हैं।
कागज के रावण?
हाँ, मतलब बाहर से बहुत डरावनी पर भीतर से एकदम खोखली। सत्संकल्प कहता है कि अगर कुछ विवेकशील लोग हिम्मत करके एक साथ खड़े हो जाएं, संगठित हो जाएं, तो ये बालू की दीवार की तरह ढह जाएंगी।
वाओ।
इन्हें खड़े रखने वाली ताकत कोई और नहीं, हमारी अपनी चुप्पी और हमारा डर ही है।
विवेक को परंपरा से ऊपर रखने का शायद सबसे बेहतरीन उदाहरण स्वामी विवेकानंद के जीवन से मिलता है।
हाँ बताइए।
जब कलकत्ता में प्लेग फैला तो वो अपनी सारी पूजा पाठ और साधना छोड़कर बीमार लोगों की सेवा में लग गए थे।
बिल्कुल। और जब किसी ने उनसे पूछा कि आप अपनी साधना क्यों छोड़ रहे हैं, तो उनका जवाब आज भी सोचने पर मजबूर करता है। उन्होंने कहा, भगवान के अपने पुत्र दुख में तड़प रहे हों और मैं आंखें बंद करके उनका नाम जपता रहूं, क्या तुम इसे ही उपासना समझते हो?
क्या बात है, मतलब मानवता सबसे ऊपर।
हाँ, यही विवेक का सच्चा रूप है। एक और प्रसंग है जब पैसे की कमी के कारण वो रामकृष्ण आश्रम की जमीन बेचने को तैयार हो गए थे। उन्होंने कहा कि मठ मंदिरों की स्थापना संसार की भलाई के लिए होती है और यदि उसका उपयोग भले काम में हो तो इसमें कोई हानि नहीं।
तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा का सार यही है कि एक बेहतर युग का निर्माण हथियारों से या नारों से नहीं, बल्कि जनमानस को बदलने से होगा।
जी, जैसे जैसे हमारी सोच साफ होगी और विवेक जागेगा, हम खुद ही अनुपयोगी चीजों को छोड़ने और उपयोगी चीजों को अपनाने की ओर बढ़ते जाएंगे।
और सत्संकल्प हमें ये विश्वास दिलाता है कि ये बड़ी बड़ी दिखने वाली कुरीतियां असल में कागज के रावण की तरह खोखली हैं।
बिल्कुल।
तो अंत में विचार करने के लिए एक सवाल ये है कि हमारे अपने जीवन और समाज में वो कौन सा कागजी रावण है जिसे हम सिर्फ इसलिए चुनौती नहीं दे पा रहे क्योंकि हम उसमें पलीता लगाने वाले पहले व्यक्ति बनने से डरते।